Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om, Om, Om. Krishna Yajurvediya. मंत्रोपनिषद के अंतर्गत श्वेताश्वतर उपनिषद का चतुर्थ अध्याय में द्वितीय मंत्र की व्याख्या है। मंत्र का अभ्यास करो। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्त तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदापस्तत्प्रजापतिः त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः नीलः पतङ्गो हरितो लोहिताक्षस् तडिद्गर्भारितवः समुद्राः अनादिमत्त्वं विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा अजामेकां लोहितः शुक्लकृष्णाम् बहवी प्रजाः सृजमानाम् स्वरूपा अजो येको जुषमाणानुशेते जहात्येनाम् भुक्तभोगामजोऽन्यः द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिश्वस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्ती अनस्नन्यो अविचाकशीति ये मंत्र के तीसरे लाइन के अंतिम में तयोरन्यः पिप्पलम् स्वादु अत्ति अत्ति ये संधि है। आगे अनन्य अनस्नन है तो इकार के बाद अ होता है तो इ के स्थान पर य हो जाता है। इकोयणची सूत्र लागू होता है तो संधि नहीं करोगे तो पढ़ते समय में स्वादवत्यनन्य इस तरह एक साथ पढ़ना चाहिए। और क्योंकि संधि करना है इसलिए स्वादवत्ति अनन्य अनस्न ये संधि हो जाता है। आपको समझने के लिए हमने ये संकेत किया। नहीं तो कहोगे लिखा कुछ और है स्वामी जी उच्चारण कुछ और कर रहे हैं तो गलत लिखा है कि गलत उच्चारण कर रहे हैं ये बात हो सकती है। तो लिखा भी सही है उच्चारण किया भी सही है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद का चतुर्थ अध्याय के प्रसंग चल रहा है क्योंकि ये परमात्मा अनेक हो गया हो सकता है होता ही रहा है और एक हमारे पूर्वीय दर्शन की विशेषता है कि वो अनेक होने पर भी वो एक ही है। वो परमात्मा अनुग्रह और निग्रह दोनों करता है, कर्म फलों को भोगने के लिए वह आपकी बुद्धि को अशुभ में प्रेरित करता है, कर्म फलों से आपकी यदि वितृष्णा हो जाती है तब आपकी बुद्धि को वह परमात्मा शुभ में प्रेरित करता है। इसीलिए गीता में या उपनिषद आदि अनेक जगह कई बार ये पढ़ने में मिलता है, कहीं कहीं तो ये कहा गया है कि सभी की बुद्धि कर्म के अनुसार चलती है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। कोई जाए कुछ भी कर ले, कितने ही प्रयत्न कर ले, वे उसको जो कर्म भोगना है वो कर्म भोगने के अनुसार ही उसकी बुद्धि परिचालित होती है यानी प्रेरित होती है। तो हर मनुष्य हर प्राणी की बुद्धि कर्म के अनुसार संचालित होती है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। उदाहरण देते हैं, असंभवो एम मृगश्च जन्म तथापि रामः लुलुभे मृगाय प्राय समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि पुंसा मलिना भवन्ति। ऐसा भी उदाहरण देते हैं, भगवान राम हमसे ज्यादा मूर्ख तो नहीं थे, भगवान राम हमसे ज्यादा मूर्ख तो नहीं थे, शायद हमसे ज्यादा ही समझदार रहे होंगे। इसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा दिखता है कि काम जब राम ने किया तो वो हमसे ज्यादा ही मूर्ख सिद्ध हुए। बात समझ रहे? कब? हम लोग ये जानते हैं कि कभी भी सोने का मृग होकर घास चरता हुआ ये संभव होगा? सोने का मृग जंगल में अब घास चरे, ये संभव होगा? और जंगल में विचरण करके घास चरने वाला तो जो मृग होगा वो हाड़ मांस का ही होगा, सोने का तो होगा नहीं। और कदाचित सोने का मृग हो भी जाएगा तो वो आपके घर के शोकेस की शोभा के लिए हो जाएगा, जंगल में घास चरने वाला तो किसी भी हालत में नहीं होगा, क्योंकि सोना तो जड़ है, उसमें चेतना होना संभव नहीं है। और चेतना का जो संचार होगा वो हाड़ मांस के इस अन्नमय कोष के माध्यम से होगा, और अन्नमय कोष के माध्यम से जो चेतना का संचार होगा वो फिर सुवर्ण नहीं होगा। ये बात क्या राम नहीं जानते थे? हम जिस तरह मूर्खता कर रहे हैं उससे भी ज्यादा मूर्खता करते हुए दिख रहा है भगवान राम। जैसे हम मांस और हाड़ के इस पुतले को आत्मा मान रहे हैं, ये हमारी मूर्खता है। इसी तरह वहां मांस और हाड़ के उस शरीर को भगवान राम सुवर्ण मान रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि नहीं, राम की गलती नहीं है, राम ने नहीं माना है, ये तो भगवती सीता ने माना है। सामने दिखता हुआ जो मृग है सुवर्ण का, सबसे पहले राम ने देखा कि सीता ने देखा? आप समझदार हैं, आप सीता से भी ज्यादा समझदार हैं, तभी तो कलयुग में जी रहे हैं। नहीं तो सीता तो कलयुग में नहीं जी रही, वो तो त्रेता युग में ही अपनी लीला समाप्त कर गई। कलयुग में जीने के लिए तो ज्यादा बुद्धि चाहिए। सबसे पहले सीता ने देखा, और सीता ने राम को संबोधन किया कि राम देखो कितना सुंदर मृग है, ऐसा मृग तो हमने कभी नहीं देखा है, कहीं भी नहीं देखा है, इतने वर्ष हो गए। मुझे लगता है जिस समय भगवती सीता ने उस सुवर्णमय मृग को देखा, लगभग वनवास के समय जो समय है, अवधि है 14 वर्ष का, 13 वर्ष पार हो चुका था, 14वें वर्ष में ये घटना घट रही है। क्योंकि तुरंत रावण का सीता का अपहरण हुआ, वो 1 वर्ष के बाद रावण का वध हुआ और अयोध्या वापसी, तो 14वें वर्ष के जो वनवास पीरियड है उसमें 13 वर्ष तो सीता का वनवास व्यतीत हो चुका था, ये तो 14वें वर्ष के पीरियड में ये दिख रहा है, अवधि में ये दिख रही है। तो भगवती सीता कहते हैं कि 13 वर्ष के जंगल का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, हमने कभी भी कहीं भी सुवर्ण का मृग नहीं देखा, ये पहली बार देख रहे हैं, ये बहुत अद्भुत घटना है। भगवान राम को प्रेरित कर रही हैं कि जाओ उसको लेके आओ, संभव हो तो उसको पकड़कर ले आओ ताकि मैं अपने ही कुटिया में उसको रखूंगी और अपने हाथ से उसको घास खिलाऊंगी, पानी पियाऊंगी, उसके साथ में खेलूंगी, कुटिया का शोभा होगा। भगवान राम ने देखा, क्या तुम ठीक कह रहे हो, सुवर्ण का मृग तो है ही है, हमने भी देखा है, पहले सीता ने देखा और सीता ने दिखाया तो राम ने देखा। ये राम ने जो सुवर्ण मृग देखा, ये राम ने नहीं देखा, सीता के दिखे हुए का अनुवाद किया है राम ने। एक बात ध्यान रख लेना, कई बार महापुरुष या परमात्मा अपने भक्त की भावना के अनुसार वो अनुवाद कर देते हैं, महापुरुष भी अनुवाद कर देते हैं, कई बार उसकी भावनाओं को ठेस न लगे इसके लिए केवल सहमति अनुवाद, सहमति माने उसका अनुवाद, पहले वो बोले उसके बाद वो भी उसमें सहमत हो जाए तो अनुवाद, इस ट्रांसलेशन हुए अनुवाद। राम का बोला हुआ नहीं ये सुवर्ण मृग है, किसका बोला हुआ है, सीता का बोला हुआ है, और राम ने उसको सहमति दे दी, इसका मतलब क्या हुआ, अनुवाद हुआ। बोले तुम इसी में प्रसन्न हो तो चलो हम ला देते हैं, फिर भी कवियों ने इस बात को लिख दिया है, असंभवो हेम मृगश्च जन्म, हेम मृग सुवर्णमय मृग का जन्म संभव नहीं है, तथापि रामो लुलुभे मृगाया, फिर भी भगवान राम उस सुवर्णमय मृग के प्रति प्रलोभित होकर उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ पड़े। तब विद्वान आगे लिखते हैं, प्राय समापन्न विपत्ति काले, प्राय करके विपत्ति काल जब उपस्थित होती है, यानी विपत्तिक समय, विपत्ति आने का समय होता है, तब उस विपत्ति भोगने के लिए बुद्धि भी उसी प्रकार की हो जाती है। दियोपि पुंसा मलिना भवंती, पुंसा में बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि मलिन हो जाती है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। जब अब उस माया में फंसना होता है, उस विपत्ति में फंसनी होती है, तब वही महामाया बड़े बड़े विद्वानों को भी मोहित करके उसमें फंसा देती है, उस समय उसकी विद्वता काम नहीं करती है। तो यही कह रहे हैं कि वो अनुवाद है, यस्मत् स एव स्रष्टा तस्मिन्नेवाह लयस् तस्मात् स एव सर्वम् न ततो विभक्तम् अस्ति इत्यह मंत्र वर्णनेन। भगवान शंकराचार्य जी भाष्य के इस मंत्र की व्याख्या करने से पहले एक पंक्ति लिखते हैं, क्योंकि उसी परमात्मा से अनेक वाह है, वही सृष्टा है इस सारे जगत की, और उसी में ये सारा जगत लीन भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विश्व ब्रह्मांड उस परमात्मा से भिन्न रंच मात्र भी नहीं है। उससे उत्पन्न होना और उसी में लीन होना, इससे ये सिद्ध हुआ है कि वो ये विश्व प्रपंच उससे भिन्न नहीं है। उसको दिखाने के लिए ये मंत्र प्रस्तुत हुआ है। तदेवाग्नि, आप परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो, दिखते हुए परमात्मा को परमात्मा के रूप में नहीं मानोगे तो फिर कभी भी परमात्मा का दर्शन होगा ही नहीं। परमात्मा का दर्शन इसी रूप में, इन्हीं रूप में होगा। आपको यदि अग्नि में परमात्मा का दर्शन हो सकता है तो सर्वत्र परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि दिखने वाले वस्तु के रूप में तो अग्नि ही है, वही परमात्मा भक्त मेरा दर्शन करे इस अभिप्राय से अग्नि हुआ है, नहीं तो अग्नि होने का क्या प्रयोजन है परमात्मा को। मेरा दर्शन करना चाहता है, दिखने वाला वस्तु अग्नि है इसीलिए मुझे देख ले वे, और दिखता हुआ परमात्मा को आप सामान्य अग्नि के रूप में परित्याग और उपेक्षा कर देते हो तब फिर परमात्मा का दर्शन करने का और दूसरा उपाय ही नहीं है। आंखों से दर्शन करना चाहते हो तो यही उपाय है, अग्नि को देखो, अग्नि दिख रहा है। आत्मानंद का दर्शन करना चाहते हो तो ये हाड़ मांस के पुतले को ही देखना है, इसके अलावा आत्मानंद को देखने का और कोई उपाय नहीं है। है उपाय, बोलो है? इस शरीर के अलावा इन आपके चर्म चक्षु से आत्मानंद को देखने का कोई और उपाय है? इन्हीं अन्नमय कोष के अलावा इन चर्म चक्षु से आप लोगों को देखने का कोई उपाय है? इन चर्म चक्षुओं से आपको देखना होगा तो यही अन्नमय कोष के माध्यम से देखना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं बोलो? क्योंकि जिस आंखों से हम देखना चाह रहे हैं वो आंख भौतिक है, आप अभौतिक हैं, तब आप अभौतिक हैं, ये आंख भौतिक है, तो भौतिक आंख अभौतिक आपको कैसे देख पाएंगे? तब फिर भौतिक आंख भौतिक आपके देह के सहित आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आंख भी भौतिक है, पंचभूतात्मक है, अन्नमय है। आंख अन्नमय है कि नहीं बोलो? जिन आंखों से हम आपको देख रहे हैं या जिन आंखों से आप हमको देख रहे हैं वो आंख अन्नमय कोष का अंग है कि नहीं? गोलक कह रहे हैं हम यहां। हालांकि देखने वाले तो चक्षुर इंद्रिय है, लेकिन चक्षुर इंद्रिय गोलक के बिना आपको हमको नहीं देख पाएंगे। जब भी आपको हमको चक्षुर इंद्रिय देखेंगे तो गोलक के माध्यम से ही देखेंगे। तब जो गोलक अन्नमय आप जो आपका शरीर या आप अन्नमय कोष के रूप में दिखाई पड़ेंगे वो देखने वाला जो चक्षु गोलक है वो भी तो अन्नमय कोष का ही अंग है। अन्नमय कोष का चक्षु गोलक के माध्यम से, अन्नमय कोष आपके शरीर के माध्यम से कोषातीत आपको हम जान पाएंगे। बात समझ में आ गई कि इसके अलावा और कोई उपाय है? तब परमात्मा ने विचार किया, ये संसार के प्राणी जितने भी हैं सब मनुष्य मेरा अनुभव कर सके, इसके लिए उसने कोई न कोई उपाधि ग्रहण की है और उस उपाधि के द्वारा ही हम इस भौतिक नेत्रों के द्वारा उस परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। सोपाधिक चक्षु द्वारा सोपाधिक परमात्मा का दर्शन होगा, सोपाधिक चक्षु द्वारा निरुपाधिक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। तब अग्नि आपको दिखता है कि नहीं? आंखों से अग्नि भौतिक है, आपका आंख भी भौतिक है, भौतिक आंख के द्वारा भौतिक अग्नि दिखाई पड़ रही है, जो भौतिक आंख के द्वारा भौतिक शरीर दिखाई पड़ रहा है। शरीर दिखाई पड़ते ही आप और हम ये कहेंगे कि हमने आत्मानंद का दर्शन किया, ये कहेंगे कि नहीं? आपके भौतिक शरीर को दिखने पर ही हम ये कहेंगे कि हमने उनको देखा। आत्मानंद के भौतिक शरीर को दिखने पर ही आप कहोगे कि हमने आत्मानंद को देखा। इसी तरह अग्नि को देखते ही आप परमात्मा को देखा, ये कह सकते हो कि नहीं? है आत्मानंद के शरीर को, आकार को देखकर आत्मानंद की स्मृति हो आती है, दर्शन हो आता है। तब अग्नि को देखकर परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं हो पा रहा है आपको? अग्नि परमात्मा का एक शरीर है, अग्नि परमात्मा नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना। अग्नि परमात्मा नहीं है, अग्नि परमात्मा का एक शरीर है। जैसे शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा एक शरीर है, परंतु मैं न होता हुआ भी मेरे होने का संकेत करता है। ये शरीर आप नहीं है, ये शरीर जो दिख रहा है हमको आंख से, ये आप नहीं है, आप इससे भिन्न है। आप ये शरीर न होने पर भी ये शरीर आपका जो शरीर है ये आपके होने का संकेत करता है। तब इन्हीं शरीर के माध्यम से हम आपके स्मरण या आपके साथ व्यवहार करते हैं और ये कह देते हैं कि हमने आपको देखा। इसी तरह अग्नि भौतिक वस्तु है और जो परमात्मा है वह अभौतिक वस्तु है। अग्नि मूर्त वस्तु है, परमात्मा अमूर्त वस्तु है। अग्नि सगुण वस्तु है, साकार वस्तु है, परमात्मा निर्गुण है और निराकार है। निर्गुण निराकार उस परमात्मा को देखने के लिए या तो आपको वही दृष्टि चाहिए जिस दृष्टि से वो दिखता है, परंतु वो दृष्टि आपके पास जब तक विकसित नहीं होगी तब तक तो इसी दृष्टि पर भरोसा करना पड़ेगा कि नहीं, बोलो? इसलिए तो गीता में कहा भगवान श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय में, आपको याद है, उत्क्रामंतम स्थितम वापि गुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो हमने हमेशा व्याख्या के अंतर्गत ये बात कही है, हमारे पास पदार्थों को देखने के लिए तीन दृष्टि है और जगत में तीन ही प्रकार के पदार्थ हैं और तीनों प्रकार के पदार्थों को देखने के लिए तीन प्रकार की दृष्टि है। तीन प्रकार के पदार्थ क्या है? एक पदार्थ प्रत्यक्ष, दूसरा पदार्थ परोक्ष और तीसरा अपरोक्ष। प्रत्यक्ष ये संसार घटपट आदि जितने भी भौतिक हैं, पंचकोशात्मक पंचभूतात्मक पंचीकृत और इस मर्तलोक में जो कुछ आप देखते हैं इन आंखों से चर्म चक्षु से, उन सबको प्रत्यक्ष पदार्थ कहा जाएगा। और जो इस मर्तलोक में नहीं है इन आंखों से नहीं दिखा जा सकता, मृत्युलोक में नहीं है, इन आंखों से नहीं दिखा जा सकता, अन्य अन्य लोक में है। तब उन पदार्थों को जानने के लिए, देखने के लिए दूसरा चक्षु की आवश्यकता है, इन चक्षुओं से नहीं दिखेगा। आप जो कर्म करेंगे वो कर्म वो क्रिया तो आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन उस कर्म उस क्रिया का जो फल है वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। वह स्वर्ग और नरक, या तो आप कर्म करते समय में या तो पाप करोगे या पुण्य करोगे। न्याय्यम वा विपरीतम वा पंचयते तस्य हेतव, गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं। दो कर्म होते हैं, या तो न्याय कर्म करो, न्याय माने शास्त्र सम्मत पुण्य शुभ कर्म, या विपरीतम च शास्त्र निषिद्ध अशुभ कर्म पाप कर्म। कर्म ये कर्म की क्रिया के ये दो ही स्वरूप हैं। तब ये दोनों कर्म को करने वाले यही पांच साधन हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम न्याय्यम वा विपरीतम वा तस्यैते तस्य हेतव, गीता का श्लोक। तब उसका जो फल देखना होगा तो कैसे देखोगे? तब ये कहा जाता है कि चर्म चक्षु से न देखकर धर्म चक्षु से दिखाई पड़ेगा। आपके पास इन चक्षु के अलावा यदि धर्म चक्षु है तो आपके कर्मों का जो फल पाप या पुण्य दिखाई पड़ेगा। धर्म चक्षु नहीं है तो आपको पाप नहीं दिखाई पड़ेगा और पुण्य भी दिखाई नहीं पड़ेगा। इन चक्षु से पाप नहीं दिखता है, पाप का फल दिखेगा, पाप नहीं दिखेगा। और जब तक पाप का फल आएगा तब तक तो पाप अपना काम कर चुका हुआ होगा। पाप का फल देखना कोई बहुत विशेषता की बात नहीं है, पाप को देख पाओ तब जाकर आपकी विशेषता है। पुण्य का फल देख लेना ये कोई विशेषता की बात नहीं है, पुण्य को देख पाओ तो ये आपकी विशेषता है। लेकिन पाप और पुण्य इन आंखों से नहीं दिखेगा, उसके लिए धर्म चक्षु। तो हम हमेशा ये व्याख्या किया करते हैं। और ये पुण्य और पाप ये प्रत्यक्ष नहीं है, पुण्य और पाप ही परोक्ष है। स्वर्ग परोक्ष है पुण्य का फल, नरक परोक्ष है पाप कर्म का फल। स्वर्ग और नरक इन आंखों से नहीं दिखेगा, स्वर्ग और नरक धर्म चक्षु से दिखेगा। इसलिए हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष वस्तु को देखना हो तो चर्म चक्षु की आवश्यकता है, परोक्ष वस्तु को देखना हो तो चर्म चक्षु से नहीं दिखेगा, इसलिए धर्म चक्षु की आवश्यकता है।